आस्तिक जब वापस अपनी माँ से बात करने के लिए कमरे में वापस आता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके कमरे में कोई लड़की मौजूद थी और वो उसकी माँ की तस्वीर के बहुत करीब थी। इतनी करीब तो कभी आस्तिक भी नहीं गया था। और ये क्या, वो लड़की उसकी माँ की तस्वीर को हाथ लगाने वाली थी? ये सोचते ही आस्तिक का दिमाग फट गया। पर जब उसने उस लड़की का चेहरा देखा तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया था। ये वही थी। आस्तिक खुद पर काबू नहीं रख सका और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए वो उसके गले तक पहुंच गया था। आस्तिक का दिल कर रहा था कि वो उसकी जान ले ले। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के कमरे में अपने गंदे कदम रखने की? आस्तिक यही सोचकर गुस्से से भर रहा था। अरुणिमा जब सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी तो आस्तिक को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। अगर पृथ्वी सही समय पर नहीं आता तो शायद आस्तिक अरुणिमा को मार चुका होता। पृथ्वी अरुणिमा को कमरे से ले जा चुका था, लेकिन आस्तिक का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। इसीलिए वो अपने कमरे से निकलकर बाहर की तरफ आया। बाहर आकर उसने देखा कि अरुणिमा बाहर सोफे पर बैठी हुई है और उसके सामने पृथ्वी अजीब हरकतें करते हुए अरुणिमा को हंसा रहा था। उसकी वो हंसी आस्तिक की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। यही सब सोचते सोचते आस्तिक परेशान हो गया था। उसने गुस्से में दीवार में हाथ मारते हुए कहा, ये लड़की बहुत चालाक है, इसने मेरे भाई को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन नहीं, तुम इस घर में किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकती हो, क्योंकि ये मेरा महल है और तुम यहाँ पर सिर्फ एक कठपुतली हो। अब मज़ा आएगा तुम्हारे साथ खेलने। जैसे कठपुतली की डोर उसके मालिक के हाथ में होती है और उसे वो अपनी मर्जी से नचा सकता है, ठीक उसी तरीके से तुम्हारी डोर भी मेरे हाथ में होगी और मैं तुम्हें अपने तरीके से नचाऊंगा। बस इंतज़ार करो सही वक्त का। अरुणिमा वापस घर आ गई थी। ज्योति अरुणिमा को उसके घर के बाहर छोड़कर अपने घर चली गई थी। अरुणिमा जैसे ही घर के अंदर आती है देखती है कि रात काफ़ी हो गई है, शायद इतनी रात तक कोई जग ना रहा हो। इसीलिए वो किचन में जाती है। एक पानी की बोतल लेकर वो अपने कमरे में जाने ही वाली होती है कि वो देखती है उसकी माँ के कमरे की लाइट अभी भी जल रही है। उसकी माँ इतनी रात तक जाग रही थी, ये सोचकर अरुणिमा परेशान हो जाती है। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी। अरुणिमा जल्दी से अपनी माँ के कमरे में जाती है। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है और उसकी सोच के अनुसार शारदा जी अपनी फाइलों में उलझी हुई थी। अरुणिमा अंदर आती है और अपनी माँ के हाथ से फाइल छीनते हुए कहती है, छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस है हमारी, क्यों इतना परेशान हो रही हैं आप? शारदा जी जब अरुणिमा को देखती हैं तो कहती हैं, अरे अरु, तू कब आई? कैसी रही तेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी? अरुणिमा हाँ में सर हिलाती है और कहती है, हाँ माँ, पार्टी तो अच्छी थी, पर आप मुझे ये बताइए कि आप इतनी रात को क्यों जाग रही हैं? इतनी सारी फाइलें क्यों खोलकर बैठी हुई हैं? शारदा जी अरुणिमा के हाथ से वो फाइल लेती है और उसमें लगे पेपर को देखते हुए कहती हैं, प्रिंटिंग प्रेस के पेपर नहीं मिल रहे हैं, वही ढूंढ रही थी। शारदा जी की बात सुनकर अरुणिमा भी परेशान हो जाती है और कहती है, क्या प्रिंटिंग प्रेस के पेपर नहीं मिल रहे हैं? ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं पेपर, यहीं कहीं रखे होंगे? शारदा जी भी परेशान होते हुए कहती हैं, वही तो बात है, मैंने सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख लिया है, उसके पेपर कहीं नहीं मिल रहे हैं। अभी दो दिन पहले ही तो मैंने वो पेपर देखे थे। अरुणिमा भी उन पेपर में ढूंढते हुए कहती है, देखो माँ, ध्यान से देखो, यहीं कहीं रखे होंगे, शायद आपका ध्यान नहीं रहा होगा और आपने किसी दूसरे फाइल में रख दिए होंगे। शारदा जी ने कहा, मैंने हर जगह चेक कर दिया है, वो पेपर मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं और कल वेलफेयर वाले आएंगे प्रिंटिंग प्रेस के पेपर चेक करने के लिए। अगर पेपर नहीं मिले तो क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? ये प्रिंटिंग प्रेस ही हमारे जीने का सहारा है और अगर ये भी बंद हो गया तो कहाँ जाएंगे हम सब? अपनी माँ को इतना परेशान देखकर अरुणिमा अपनी माँ को कंधे से पकड़ती है और कहती है, क्यों परेशान हो रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो हमारी प्रिंटिंग प्रेस है और वो क्यों बंद होगी, आप इतना परेशान मत होइए। अरुणिमा अपनी माँ को समझाकर उन्हें सुलाकर कमरे से चली जाती है, लेकिन शारदा जी इतनी परेशान थी कि उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी और आज तो अरुणिमा को भी नींद नहीं आ रही थी। एक तो आस्तिक से उसकी मुलाकात उसे डरा रही थी और दूसरी अब उसकी प्रिंटिंग प्रेस के पेपर भी नहीं मिल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ महल में आस्तिक एक बड़े से खाली कमरे में बैठा हुआ था और उसके सामने सिर्फ एक पियानो रखा हुआ था। इस पूरे कमरे में जहां पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और एक मध्यम रोशनी में वो पियानो चमक रहा था। आस्तिक उस पियानो के पास आता है और अपनी उंगलियों से उसे पियानो पर एक मधुर धुन बजने लगता है। आस्तिक अपनी आंखें बंद करता है और उसके सामने उसकी माँ का चेहरा आ जाता है। जब वो सब छोटे थे तो उसकी माँ भी अक्सर ऐसे ही पियानो बजाकर ये गाना गाया करती थी, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज। आज आस्तिक भी पियानो पर यही धुन बज रहा है और इसी गीत को गा रहा है, लेकिन इसमें प्यार और अपनापन नहीं है बल्कि गुस्सा और नफरत है। आस्तिक की आंखों के सामने कभी उसकी माँ का चेहरा आता तो कभी अरुणिमा का चेहरा, और हर बदलते पल के साथ उसके चेहरे के भाव बदल जाते। आस्तिक ने पियानो की धुन को खतरनाक करते हुए ये गाया, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा। हो चांदनी जब तक रात, देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ, जब कोई बात बिगड़ जाए। आस्तिक ख्यालों से अरुणिमा की छवि खो गई और सिर्फ उसकी माँ और आस्तिक ही थे जो इस पियानो पर एक साथ बैठकर गाना गा रहे थे। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कस्में, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में, जब कोई बात बिगड़ जाए। दिल को मेरे हुआ यकीन, हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं, जब कोई बात बिगड़ जाए। अचानक से आस्तिक का वो सख्त चेहरा नरम पड़ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ उसके पास ही बैठी हुई है और वो उसके साथ इस गाने को गा रही थी। ये गाना उसकी माँ का पसंदीदा गाना हुआ करता था। आस्तिक तो यहाँ पर अपने दर्द को इस गानों के जरिए महसूस कर रहा था, लेकिन अरुणिमा का दर्द तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। अगले दिन सुबह शारदा जी रोज की तरह अपनी प्रिंटिंग प्रेस के लिए निकलती हैं। उनका ये प्रिंटिंग प्रेस उनकी रोजगार का एकमात्र जरिया था। ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जो भी था उनके लिए काफी था। जैसे ही शारदा जी प्रिंटिंग प्रेस में पहुंचती हैं, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सारा स्टाफ एक जगह खड़ा होकर बातें कर रहा था। शारदा जी वहां जाती हैं और मैनेजर से कहती हैं, क्या बात है मैनेजर साहब, अभी तक प्रेस चालू क्यों नहीं हुई? मैनेजर साहब ने शारदा जी को देखकर कहा, मैडम जी प्रेस कैसे चालू कर सकते हैं, अभी तक तो एक भी प्रिंट नहीं हुआ, ना कोई अखबार ना कोई मैगजीन। शारदा जी हैरानी से कहती हैं, लेकिन क्यों, आज प्रिंटिंग का काम क्यों नहीं हुआ? मैनेजर साहब ने कहा, मैडम जी ये कोर्ट का नोटिस आया, हम सब इसी बात के लिए परेशान हो रहे थे और आपके आने का इंतजार कर रहे थे।
शारदा जी जब वो कोर्ट का नोटिस देखी हैं, तो हैरानी से उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये प्रिंटिंग प्रेस जिस जमीन पर बना हुआ था वो जमीन गवर्नमेंट की थी। अगर शारदा जी ने अगले एक हफ्ते में प्रिंटिंग प्रेस के ओरिजिनल पेपर कोर्ट में नहीं दिखाए तो उनका प्रिंटिंग प्रेस बंद हो जाएगा और सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए उन पर केस किया जाएगा।